दिन भर तारीख 21 जुलाई दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। दलितों की पिटाई को लेकर गुजरात में कई जगह हुई हिंसक वारदातें। राहुल गांधी मिले पीड़ित परिवारों से। पीड़ित परिवार क्या चाहता है?
ये लोगों ने तो अपने कीधुं से के तमे आने कार्यवाही कड़क कार्यवाही करावी।
जिन लोगों ने इनको मार मारी की है उनको आजीवन कैद सजा कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए।
मायावती के अपमान पर सड़कों पर उतरे बीएसपी कार्यकर्ता। दयाशंकर की गिरफ्तारी की मांग। मायावती बोली,
यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आकर तो इस उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा दिल जीत सकते थे, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है।
रूसी एथलीट नहीं हिस्सा ले सकेंगे रियो ओलंपिक में। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। गुजरात के ऊना कस्बे के एक गांव में दलितों को बर्बरता से पीटे जाने को लेकर गुजरात के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। जैतपुर में एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। इस मामले में अब तक 20 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है। कई राजनीतिक नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ितों के परिजनों से मिलने ऊना के मोटा समढियाला गांव पहुंचे। इसके पहले कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल भी ऊना पहुंचे थे। स्विट्जरलैंड की आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अदालत ने रूस की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें डोपिंग के आरोपों के तहत रूस के धावकों और खिलाड़ियों को निलंबित किया गया है। कहा गया है कि रूस के ये खिलाड़ी खेलों की संचालक संस्था के नियमों को पूरा ना कर पाने के कारण अयोग्य हैं, लिहाजा इन्हें अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक में नहीं भेजा जा सकता। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF ने अपनी जांच में डोपिंग के सबूत पाने के बाद रूसी एथलेटिक्स फेडरेशन को निलंबित कर दिया था। रशियन ओलंपिक कमेटी और 68 एथलीट्स ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों की पड़ताल के बाद फैसला रूसी एथलीट्स के खिलाफ आया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि रविवार पर इस फैसले को लेकर बैठक होगी। IOC फिलहाल रूस के सभी खिलाड़ियों पर डोपिंग को लेकर प्रतिबंध लगाने के मामले में विचार कर रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रजाक पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। पहली बार अमरीका के कई अरब डॉलर की धोखाधड़ी की जांच के मुकदमे में के उनसे जुड़े होने की बात सामने आई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने मांग की है कि नजीब को अपना पद छोड़ देना चाहिए। वहीं नजीब रजाक खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। कुआलालंपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जांच में पूरा सहयोग करेगी। नजीब रजाक ने कहा,
dan dia terhad kepada nama-nama yang telah pun
ये साफ करना जरूरी है कि ये एक सिविल मामला है ना कि आपराधिक, और ये न्याय विभाग में दर्ज नामों तक सीमित है। सरकार की तरफ से हम अंतर्राष्ट्रीय निकायों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत सरकार कश्मीर में पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूक के विकल्प पर विचार कर रही है। कश्मीर में हिंसा के बाद जवाबी कार्रवाई में छर्रे वाली बंदूक से जख्मियों की भारी संख्या को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हम विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेंगे, ये देखेगी कि पैलेट गन के विकल्प के तौर पर कौन से गैर घातक हथियार लाए जा सकते हैं। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये समिति पैलेट गन यानी छर्रों वाली बंदूक और गैर घातक हथियारों के विकल्प पर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत में संसद से लेकर सड़क तक आज दलितों के मुद्दे ही छाए रहे। 2 दलित मुद्दे, पहला गुजरात में दलितों की पिटाई का मामला और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। पहले चर्चा गुजरात की, जहां के वेरावल में जानवर की खाल उतार रहे दलितों की पिटाई के मामले में राजनीति गर्म है। मामले को लेकर दलित समुदाय में काफी आक्रोश है। कुल 20 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कई जगह आज भी गुजरात में हिंसक घटनाएं हुई। इस बीच नेताओं का ऊना पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज पीड़ित परिवारों से मिलने जा पहुंचे। गुजरात में आज दिनभर किस तरह से घटनाचक्र घूमा, सुनिए अंकुर जैन से।
गुजरात के ऊना में दलित समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। आज गुजरात में कई जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बीच एक महिला ने जेतपुर में आत्महत्या करने की कोशिश की। अब तक विरोध में कुल 20 से अधिक लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। महिला के पति को 2 दिन पहले जेतपुर में हुई तोड़फोड़ के लिए गिरफ्तार किया गया था। सूरत में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। वहीं आज पीड़ित युवकों के परिवार वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा रहा। सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल, बाद दोपहर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी ऊना पहुंचे। राहुल गांधी ने गुजरात में गिर सोमनाथ जिले में ऊना तालुका का दौरा किया और फिर राजकोट के सिविल अस्पताल में पीड़ितों के परिवारजनों से मिले। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे गुजरात में कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है।
पूरे गुजरात में जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, जिनके पास पैसा नहीं, उनको दबाया जाता है। और ये किसकी लड़ाई? ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, और दूसरी तरफ आरएसएस, गोवारकर और नरेंद्र मोदी जी।
ऊना में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार वालों के साथ बैठ चाय पी, जिसके बाद जीतू, जिनके भाई और चाचा को इस हादसे में पीटा गया है, उन्होंने राहुल गांधी से हुई बातचीत के बारे में कहा।
राहुल जी ने हमें एक घटना के बारे में पूछा और बोला कि यहाँ गांव में या आसपास कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं लोग। हमने उनको बताया कि यहाँ छूत अछूत ऐसा होता है, हमें दूर खड़ा रखा जाता है अन्य लोगों से और हम पे ऐसे अत्याचार भी बहुत होते हैं। हमने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। हम भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं इस देश में, हम भी बढ़ना चाहते हैं।
राहुल गांधी के बाद अब कल अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने ऊना जाएंगे। केजरीवाल ने आज एक वीडियो रिलीज कर दलित युवकों से आत्महत्या ना करने की अपील भी की।
पूरा देश आपके साथ है, बस एक ही चीज का ख्याल रखना है, हिंसा नहीं करनी है। अगर हम हिंसा करेंगे तो इनके पास शक्ति बहुत ज्यादा है, ये हमारे को कुचल डालेंगे। और दूसरी चीज, दलित समाज के बच्चों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आत्महत्या नहीं करनी है। हम इनसे लड़ेंगे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे, इनसे लड़ेंगे और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे।
वहीं अब गुजरात पुलिस इस जांच में लगी है कि ऊना में दलित हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पे किसने वायरल किया था, लेकिन असली सवाल ये है कि गुजरात के गांव में ये कथित गौरक्षकों की सेना किसने बनाई है और इन्हें कौन शरण देता है। अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद।
जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी आज ऊना पहुंचे थे, वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जिस गांव में राहुल गांधी पहुंचे, वहीं पर हमारे संवाददाता विनीत खरे भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी बात की।
हम इस वक्त हैं मोटा समधियाला गांव में, जहां पर हमारे साथ हैं जो 4 लड़के जिनको मारा गया था, उनमें से 2 के पिताजी हैं पालू भाई। कुछ समझा पाएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था घटना में और आप कहाँ थे, आपको चोट कैसे लगी है?
ठोकर वागा में थे हूँ, मैंने खबर पड़ी फोन आयो, इसलिए ये लोगों ने छोड़ा हुआ गयो। चारे में ये लोगों ने हाथ जोड़ा के भाई मारा दिख रहा है, सुकम मारो।
ये कह रहे हैं जो आप गाय छुड़ाने गए थे, गाय जो पकड़ रखे थे, उन्हें वो बोले गाय मारने के लिए तुम ले जा रहे हो करके इनको मारा। अच्छा। इनके बच्चे लोगों को छुड़ाने गए थे।
आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे?
मरेला ढोर नो खाल उतारता है,
मरी हुई गायों को, गाय खाल उतारते हैं, फेंकने जाते हैं गायों को, मरी हुई गायों को।
तो ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं, मतलब कब से कर रहे हैं?
25 साल
से कर रहे हैं। आपकी उनसे मुलाकात हो पाई, कैसी तबीयत है उनकी?
तबीयत सारी से
अच्छी है, तबीयत ऐसा बोल रहे हैं।
गठोड़ा है ना, गठोड़ा मार रहे हैं,
बैठी मार लगी, बैठी मार मार रहे हैं।
तो उसके बाद से जो कार्रवाई की है, अभी मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
ये लोगों ने तो अपने कीधू से के तमे आने कार्यवाही, कड़क कार्यवाही करावी।
जिन लोगों ने इनको मारा मारी की है, उनको आजीवन कैद, सजा कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए।
लेकिन जो गौरक्षा समिति वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं?
गामड़े गामड़े थे, आवे था
गांव गांव से आए हुए थे। गांव में कोई नहीं,
नहीं
उनका नाम मालूम नहीं है, जो लोग आए उनका नाम मालूम नहीं, बार बार से आए हुए
बाहर के लोग हैं। ये पहले भी इस तरह की घटना हुई है कि ये पहली बार इस तरह से हुआ?
पहली बार
हुआ है। ये जो गाय आप लोग, आप कह रहे हैं गाय की चमड़ी उतारने का काम करते हैं, जो मरी हुई गाय होती हैं, ये कहाँ से फिर आप लाते हैं और इस तरह का शक पैदा कैसे हुआ?
फोन करे गर्दनी वाला लोग, वास में थी दलित लोग, अपना
जे जगह गाय मर गई होगी वहाँ पे ये लोग फोन करके बोलते हैं।
गामड़े गामड़े थे,
इनके समाज वाले इनको सूचना देते हैं, ये यहाँ से जाके वहाँ से लाके उसकी खाल उतारने का काम करते हैं।
आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, मतलब और क्या काम कर सकते हैं? और तो कोई काम नहीं कर सकते।
गुजरात के अंदर बेरोजगार है, हर इंसान 99% बेरोजगार है। जो चमड़े का जो उद्योग है ना वो पारंपरिक उद्योग है
और खींच
के नहीं लिया है। गाँव में ढोर मर जाते हैं तो हम लोगों को ही बुलाते हैं यहाँ पे, यही लोग उठाते हैं और आज उनके नाम पे गो रक्षा आ गई। और
गाँव में करीब कितने लोग हैं जिस काम से जुड़े हुए हैं?
गाँव में नहीं, ये पूरे गुजरात में,
पूरे गुजरात में कितने लोग हैं दलित, कितने दलित समाज?
पूरे गुजरात के अंदर 23% पूरा SC ST और ये मुद्दा है यहाँ तो इन लड़के लोगों को तो सिर्फ मारा गया
गांव में हुआ है।
एट्रोसिटी एक्ट 14607 2014 से लेके उसका RTI है, 830 औरतों पे बलात्कार हुआ है हमारी दलित औरतों पर, और उसके ऊपर भी यहाँ के जो सीएम है उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया हुआ है। मायावती जी का हम लोग धन्यवाद मानते हैं कि उन्होंने राज्यसभा में ये चीज बोली और हमारे लिए गाली भी खाया, तब जाके ये चीज हमें बनी है। मैं अगर मुंबई से आ रहा हूँ और मैं अगर ST बस के अंदर चढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा पूछा तू कौन सी जाति से,
सबसे पहला सवाल,
और वो मेरे बाजू में बैठने वाला मेरे से भी गंदा, उसने 3 दिन से नहाया नहीं होगा, और वो चीज हमारे साथ आज भी जनावर से ज्यादा बदतर हमारे साथ जाता है। और आज की तारीख के अंदर हमारा दिल, मैं इतना डॉक्टर बन रहा हूं, इंजीनियर बन रहा हूं, लेकिन इन लोगों को ये चीज नहीं चाहिए। कल एक लड़के के साथ ऐसा वाक्यात हुआ कि उसने पानी पिया ना तो बोला तू कौन सी जाति का है, उसने बोला कि एक ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए और उसको भगाया गया मार के।
विनीत खरे ऊना में दलित परिवारों से बात कर रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। अब चर्चा करते दूसरे दलित प्रकरण की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी के इस्तेमाल पर गुस्साए हजारों बसपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि बीजेपी ने टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को कल ही तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद मायावती के सुर नरम नहीं हुए। राज्यसभा में दलितों के शोषण का मुद्दा छाया रहा। दोपहर 2 बजे सदन में इस पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्टियां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती नजर आईं। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
एक ओर बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के ऊंची जाति के नेता दयाशंकर सिंह की अभद्र टिप्पणी, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के ऊना में 4 दलितों को गौरक्षा दल द्वारा पीटने का मामला। उससे ठीक पहले हरियाणा के रोहतक में एक दलित लड़की के साथ दोबारा सामूहिक बलात्कार की बर्बर घटना। ऐसा नहीं कि दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं पहले नहीं हो रही थीं, पर इन मामलों ने सत्ताधारी पार्टी को आज सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल।
पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, जनवरी 2016 में रोहित वेमुला का विस्फोट, जून 2016 में अंबेडकर दादर ऑफिस इन मुंबई इज डेमोलिश बाय द बीजेपी, जुलाई 2016 एंड दलित IAS ऑफिसर प्रोटेस्ट अगेंस्ट MP गवर्नमेंट।
राज्यसभा में दलितों पर अत्याचार पर हो रही विशेष बहस में जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने पिछले 2 साल के सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हर दिन 7 दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामले हो रहे हैं।
बिहार का चुनाव हो रहा था तब भी इनकी पार्टी जो है वो एक पोस्टर निकाली, गाय को गाय के गले मिल रहे हैं, और यहाँ गुजरात में जो गौ रक्षक कहते गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, ऐसी एक से एक अंधविश्वास की चीजें इस देश में फैला के रखी है।
बहस में न्याय की संस्थाओं में और नौकरशाही की व्यवस्था में दलितों को कम मौके और प्रतिनिधित्व के बारे में बात भी रखी गई, लेकिन केंद्र बिंदु हाल की घटनाओं पर ही रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा,
यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आकर तो इस उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराते तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा दिल जीत सकते थे, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जवाब में कहा कि सरकार उत्पीड़न की घटनाओं को कम करने के लिए अपनी ओर से सभी कदम उठा रही है और गुजरात के ताजा मामले में भी तेज गति से कार्रवाई की।
FIR तत्काल हुई, एट्रोसिटीज एक्ट तत्काल लगा, धारा 307 323 24 तत्काल लगी, और शुरू दिन है 3-4 लोग पकड़े गए। मैं ये सदन के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ, यहाँ चर्चा होने के बाद 18 तारीख को और 19 तारीख को वहाँ तोड़फोड़ आगजनी की घटना क्यों हुई?
बहस में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही चला और देश भर में दलितों के विरोध प्रदर्शनों के सामने हर नेता और पार्टी खुद को दलितों का हितैषी बताने के लिए अग्रसर दिखी। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
राज्यसभा में दलितों के शोषण का मुद्दा।
दिन भर
शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। स्विट्जरलैंड स्थित खेल मामलों की मध्यस्थता अदालत ने डोपिंग आरोपों से घिरे रूसी एथलेटिक्स फेडरेशन की रियो ओलंपिक में खेलने की अनुमति के बारे में अपील को खारिज कर दिया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAF ने अपनी एक जांच में डोपिंग के सबूत मिलने के बाद रूसी एथलेटिक्स फेडरेशन को निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ रूस के खिलाड़ियों ने मध्यस्थता अदालत में अपील की थी। रूस के खेल मंत्री ने कहा कि इस फैसले का कोई भी कानूनी आधार नहीं है और उन्होंने IAF को पूरी तरह से भ्रष्ट संस्था करार दिया। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
रशियन ओलंपिक कमेटी और 68 एथलीट्स ने निलंबित किए जाने के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF के फैसले के खिलाफ खेल मामलों की मध्यस्थता अदालत में अपील की थी। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों की पड़ताल के बाद फैसला रूसी एथलीट्स के खिलाफ आया। फैसले में कहा गया कि खेलों की नियामक संस्था IAAF के नियमों के मुताबिक रूसी एथलीट्स अगले महीने रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेशकोव ने आज के फैसले को बेहद अफसोसजनक बताया।
इस मामले से ट्रैक और फील्ड्स के वो सभी एथलीट्स प्रभावित हुए हैं जो ओलंपिक के लिए तैयारी में जुटे हैं और जिनका डोपिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन पर कोई शक भी नहीं है। विदेशी एंटी डोपिंग संस्थाएं इनका समय समय पर डोपिंग टेस्ट करती रहती थीं, इसलिए कोई भी इस पर सिर्फ अफसोस जता सकता है। हमारी संबंधित एजेंसियों को अब इस स्थिति की समीक्षा करनी होगी।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अब ओलंपिक में रूस के सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध पर विचार कर रही है, क्योंकि एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अपने खिलाड़ियों में डोपिंग को बढ़ावा देता है। रियो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है। IAAF ने इससे पहले कहा था कि रूस के कुछ खिलाड़ी प्रतिबंध के बावजूद रियो ओलंपिक में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें स्वतंत्र डोपिंग टेस्ट के जरिए खुद को बेदाग साबित करना होगा। खेल मामलों की मध्यस्थता अदालत के महासचिव मैथ्यू रीब ने कहा है कि इस फैसले के बाद भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स को व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने की इजाजत दे सकती है।
हर मामले को एक दूसरे से अलग मानते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये फैसले अभी भी ले सकती है कि ये एथलीट्स योग्य हैं या नहीं। अदालत ने इस तथ्य के बारे में कुछ चिंता जाहिर की है कि 17 जून से अमल में लाए गए इस नए नियम के मुताबिक मानदंडों के पालन में एथलीट्स के लिए व्यावहारिक तौर पर कोई संभावना बची नहीं है, क्योंकि इस नियम में ये प्रावधान है कि एथलीट्स का चयन हो सकता है अगर वो डोपिंग टेस्ट का पालन करें, लेकिन एक महीने का समय बहुत कम है और यही संभावना है कि IOC ऐसी ही व्याख्या करे।
रूस के खेल मंत्री विताल मुटको ने कहा है कि इस फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है। मुटको ने कहा कि इस फैसले ने किसी के व्यक्तिगत तौर पर किए गए डोपिंग के अपराध के लिए पूरे समूह को सजा देकर एक अलग तरह की नजीर पेश की है। मुटको ने IAAF को भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई संस्था बताया है। रूस के पास ये विकल्प अभी भी खुला हुआ है कि वो खेल मामलों की मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ स्विट्जरलैंड की संघीय अदालत में अपील कर सकती है।
तो जैसा कि आपने सुना कि रूस के पास कोर्ट में अपील करने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है, लेकिन फिलहाल रूसी एथलीट नहीं हिस्सा ले सकेंगे रियो ओलंपिक में। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद एक बार फिर से भारत का रुख करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्ता विरोधी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे दलों ने मुख्यमंत्री को शांति बहाली के लिए सुझाव दिए। जहां एक ओर घाटी में शांति बहाली को लेकर सरकार दुविधा में है, वहीं अलगाववादियों ने जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तो आंदोलन और तेज होगा। अब तक हिंसक प्रदर्शनों में 45 लोग मारे जा चुके हैं, 3,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। घाटी में 8 जुलाई को बुरहान बानी की मौत के बाद से अस्थिरता फैल गई थी। ताजा जानकारी के साथ श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
लगातार कर्फ्यू, फोन और इंटरनेट पर प्रतिबंध और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण कश्मीर में जल्दी शांति बहाली का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। अलगाववादियों ने सैनिक कानून, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने समेत 6 अंकों की मांग की थी, लेकिन प्रशासन अलगाववादियों को कोई मान्यता दिए बगैर शांति बहाली के लिए कई विकल्प तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक इन्हीं में से एक विकल्प है।
उम्मीद करती हूं कि जो आप लोग यहां हमें बातें करेंगे, जो हमसे कहीं कोताहियां होगी उनके बारे में बात करेंगे ताकि आने वाले वक्त में अब खुदा ना खास्ता इस किस्म के हादसा न हो जाए।
बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया, परंतु बड़ी अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका बहिष्कार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार चार दीवारी में कैद है और ऐसे में इस बैठक का कोई महत्व नहीं है।
किलिंग्स का सिलसिला रुक जाए, उसके बाद जो पॉलिटिकल रोल नॉर्मलसी को पैदा करने के लिए रहेगा उसमें हम अपना हाथ जरूर बटाएंगे, लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी का रोल रहा है वो मौजूदा हुकूमत का रोल रहा है। हालात को ठीक करने में या दुरुस्त करने में भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है।
इस बीच आज अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी ने फिर एक बार सरकार से कहा कि कर्फ्यू और जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को हटाया न गया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। गिलानी और दूसरे अलगाववादी नेताओं ने फिर से चार दिन के बंद की अपील की है। श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम और गांधरबल में आज स्कूल खोलने के आदेश पर सरकार की आलोचना की जा रही है, क्योंकि अभी तक कश्मीर के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी है। बंद और कर्फ्यू के कारण सरकारी घोषणा के बावजूद स्कूल बंद ही रहे। इस बीच अस्पतालों में छोटे बच्चों और युवकों की आंखों में लगे पैलेट्स पर विश्व भर में हुई प्रतिक्रिया के बाद भारत सरकार ने पैलेट गन्स के उपयोग की समीक्षा करने की घोषणा की है। ये घोषणा भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में की।
हमें नहीं चाहेंगे कि हम कोई जितना हम वाटर कैनन का प्रयोग कर सकते हैं, टीयर गैस का प्रयोग कर सकते हैं क्राउड के ऊपर, तो वह करना चाहिए। यदि वायलेंट यदि कोई माप रहता है उसे रोकने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यह सब चीजें होनी चाहिए, तुरंत बुलेट्स का प्रयोग करना यह उचित नहीं है।
गौरतलब है कि 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत्यु के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसके जनाजे में जाने की कोशिश की, जिसके दौरान सुरक्षा बलों ने इन पर फायरिंग की। अभी तक 45 लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि सिर्फ 34 लोग मारे गए हैं। अस्पतालों में सैकड़ों घायल हैं, जिनमें अक्सर बच्चे हैं जिनके चेहरे और आंखों में छर्रे या पैलेट्स लगे हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इसके परिणाम वहां पर देखे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मॉडल कंदील बलोच की हत्या की गई थी और कंदील की हत्या उनके अपने ही भाई ने नशे की दवा देकर गला घोट कर की थी। सोशल मीडिया पर अपने बेधड़क अंदाज के फोटो और वीडियो और कमेंट को पोस्ट करने के चलते पाकिस्तान के हर घर में वो लगभग जाना पहचाना सा नाम थी। उनकी माँ अनवार बीवी उनके बारे में क्या सोचती हैं, अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं आपकी भेजी हुई चिट्ठियां कि आपने हमें क्या लिखा है।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं वंदना
जी। नमस्कार
वंदना जी, आज थोड़ा सा कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है
अंदाज
उसको बदल देते हैं। कुछ चिट्ठियां मेरे पास हैं, कुछ चिट्ठियां आपके पास हैं। आज चिट्ठियों से शुरुआत करते हैं, ईमेल बाद में लेंगे।
जी बिल्कुल।
तो कौन सी चिट्ठी आपके पास, मैं देख रहा हूँ अंतरदेशी लिफाफा एक है।
जी ये है लक्ष्मण दास शर्मा, मंडलाना से लिखा है इन्होंने, हरियाणा। कहते हैं कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस की जो सीरीज है प्रसारित की जा रही विनीत खरे द्वारा, वो इनको बहुत ही अच्छी लग रही है। एक साथ में शिकायत भी जोड़ी है कि जो ज्ञान विज्ञान हमसे पूछिए करियर क्या करूं जैसे जो कार्यक्रम है वो प्रसारण उनका बंद क्यों कर दिया गया, क्या कुछ वैसा दोबारा शुरू नहीं हो सकता।
संभावनाएं असीमित हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ कार्यक्रम बंद हुए हैं तो नए शुरू भी हुए हैं, विवेचना शुरू हुई है, दुनिया जहान शुरू हुआ है और वो कार्यक्रम तमाम लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, संभावना आगे हो सकती हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी कोई हमारे सामने योजना नहीं है। ये लिखा है ओम जय माँ दुर्गे, ग्राम बिरखम बेड़ा पिथौरागढ़ से। लिखने वालों का नाम है एक्स सूबेदार DR भार्गव, जो लिखते हैं कि सन 1962 से BBC सुन रहा हूँ। उस दिन कैंटीन में नए रेडियो आए थे और मैं लेके आया शाम को, रेडियो खोला तो उस समय BBC सुना। ये इनकी पुरानी यादें हैं और कहते हैं कि सेवा काल में ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जख्मी हो गया था, अब सिर्फ BBC रेडियो सुनता हूँ और यही सुविधा मनोरंजन के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी बेहतरीन बात है DR भार्गव साहब।
बिल्कुल, ये हमें एकदम वहाँ ले गए जैसे कुछ 40-50 साल पहले एक जो कैंटोनमेंट होती है वहाँ पे बैठे होंगे
और
एकदम
छवि भर आई होंगे। जी हाँ, ये चिट्ठी आपने पहली बार लिखी है, आगे भी लिखिए सुबेदार साहब, हमें बहुत खुशी होगी।
और ये ईमेल है महेश बिहारी का, और कश्मीर मसले पे इन्होंने लिखा है कि कवरेज BBC का बेहद पक्षपातपूर्ण रहता है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग होने के बावजूद समाचारों में भारत प्रशासित कश्मीर बोला जाता है, और साथ ही कहा है कि जो सेना पर हमले होते हैं उन सैनिकों की सुध नहीं ली जाती।
देखिए महेश जी, आपका ये ईमेल मैं पहली बार, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, पहली बार आप लिख रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है कि आपने हमारे कार्यक्रम में ईमेल लिखा है, आगे भी लिखेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन मेरी आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आप कार्यक्रमों को और गौर से सुने तो आपको पूरा जो हम कवरेज करते हैं उसका अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे संवाददाता ज़ुबैर अहमद इस वक्त कश्मीर में हैं और जम्मू से उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी, जो कश्मीरी पंडितों की व्यथा कथा उन्होंने सुनाई थी, शायद आप सुनने से चूक गए। तो ऐसा नहीं है कि हम पक्षपातपूर्ण रहते हैं, हालांकि कुछ लोग श्रोताओं को लगता है कि पक्षपातपूर्ण है, लेकिन अगर हमारे तमाम कार्यक्रमों को सुनेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी।
और ज़ुबैर लगातार आगे वाले आने वाले दिनों में भी रिपोर्टें भेजेंगे तो गौर से सुनेंगे। इलाहाबाद से अनिल शुक्ला हैं और रजौली बिहार से बिपिन कुमार हैं। इन दोनों ने ही दुनिया जहां की प्रशंसा की है, खासकर तुर्की में जो तख्तापलट की कोशिश हुई और जिस तरह से बीबीसी ने पूरे उस मंजर को दिखाया और उसके विश्लेषण किया।
वंदना जी, हमें मालूम है कि समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं एक चिट्ठी का ज़रूर ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आखिर में लिखा गया है एक 85 वर्ष का बूढ़ा ओम प्रकाश, और नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है ओम प्रकाश। ये चिट्ठी बहुत छोटी छोटी अक्षरों में लिखी है, उर्दू और हिंदी दोनों में, और ये राजस्थान के बूंदी ज़िले से लिखी गई है। लिखने वाले हैं, पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा है, ओम प्रकाश है, आगे कुछ लिखा है लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही बारीक हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि आपको बीबीसी पर सुनता रहता हूँ, ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि आप किसी अलग सोच के इंसान हैं, लेकिन मानव जिन हालात में जीवन जी रहा है वो बड़ा दुखदाई है। बहुत लंबा इन्होंने पत्र लिखा है, हमारे 85 वर्ष के श्रोता हैं, तो हम तो सिर्फ इनकी ये चिट्ठी जो आई है हमारे सामने इसी के लिए सर नवाते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि हाँ, उर्दू में भी और हिंदी में भी, आगे भी लिखते रहिएगा, थोड़ा सा स्पष्ट लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अब तमाम श्रोताओं से इजाज़त चाहूँगा। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आपने अपनी भेजी चिट्ठियां भी सुन ली और अब खेल समाचार भी सुन लेते हैं। सामने रजत चांदना मौजूद हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है, क्या हाल है उसका?
जी, एंटीका में जारी पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत के लिए शिखर धवन और मुरली विजय ने पारी की शुरुआत की है और दोनों क्रीज पर टिके हुए हैं। भारत ने बिना कोई विकेट खोए फिलहाल 11 रन बना लिए हैं। उधर हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने दूसरे मैच में 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की मेजबान अमेरिका को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरे क्वार्टर के 4th मिनट में जिल विटमैन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अमेरिकी टीम को बढ़त दिलाई। उसके बाद हाफ टाइम तक भारतीय टीम 0-1 से पीछे थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में अंतिम मिनट में प्रीति दुबे ने पेनल्टी कॉर्नर कर भारत को बराबरी पर ला दिया। फिर 55वें मिनट में लीलिमा मिंज ने गोल दाग कर भारत को बढ़त दिलाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 अगस्त से रियो में होने वाले ओलंपिक्स में भारतीय टीम के लिए तैयारी के लिए ये आखिरी मौका है। उधर प्रो कबड्डी लीग में कप्तान अनूप कुमार के कप्तान के प्रदर्शन से मुंबई ने पुणे की टीम को 34-31 से शिकस्त दी। वहीं उस टूर्नामेंट में अपनी 6ठी जीत दर्ज कर पुणे पिछली से हार का हिसाब भी उन्होंने चुकता किया। मुकाबले की शुरुआत हालांकि बराबरी के दम पर हुई और पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच 1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। 36वें मिनट तक स्कोर 27-27 से बराबर था, लेकिन 37वें मिनट में राकेश कुमार की एक सफल रेड से युमिम्बा ने 3 अंकों की बढ़त बनकर स्कोर 30-27 से किया और मैच जीत लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चांदना। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। गुजरात के ऊना कस्बे के एक गांव में दलितों को बर्बरता से पीटे जाने को लेकर गुजरात के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। कई राजनीतिक नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ितों के परिजनों से मिले ऊना पहुंचे थे और उनके साथ साथ वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे। इस बीच जैतपुर में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। अब तक इस पूरे मामले में 20 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। स्विट्जरलैंड की आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अदालत ने रूस की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें डोपिंग के आरोपों के तहत रूस के धावकों और खिलाड़ियों को निलंबित किया गया है। कहा गया है कि रूस के ये खिलाड़ी खेलों की संचालक संस्था के नियमों को पूरा न कर पाने के कारण अयोग्य हैं, लिहाजा इन्हें अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक में नहीं भेजा जा सकता। मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रजाक पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। पहली बार अमरीका के कई अरब डॉलर की धोखाधड़ी की जांच के मुकदमे से उनके जुड़े होने की बात सामने आई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने मांग की है कि नजीब को अपना पद छोड़ देना चाहिए। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।